چلیں, دیٹس ونڈرفل جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ بلد, ٹھیک ہے جی. اب سورہ بلد کا ترجمہ ہم نے کر دیا کہ لا اقسم بے حاضل بلد, لا اقسم بے حاضل بلد. اب ذرا غور کریں, ہم نے جو ترجمہ پڑھا وہ ہے کہ میں قسم فرماتا ہوں اس شہر کی. یہ لا کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ نہیں نہیں, میں نہیں بتاتا, جو ہے. میرا کیا کام ہے کہ میں بتاؤں؟ میں تو آپ کی توجہ آپ کو متوجہ کرتا ہوں, آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرواتا ہوں کہ جو لفظوں کا قرآن میں جب آپ لا الہ کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ میں تو نہیں کہتے, وہاں تو کہتے نہیں, تو یہاں پہ بھی تو وہ نہیں آئے گا نا. اب اقسم یہ لفظ تقسیم سے ہے, قسم سے ہے, قسم سے آگے لفظ تقسیم ہے. لا اقسم مت تقسیم کرو بے ساتھ حاضہ اس بلد جہاں رہتے ہو. اب ایمانداری سے بتائیں, آپ فزیکلی اپنے گھر کے کمرے میں ہیں, رائٹ یا فزیکلی ہم کراچی میں ہیں, تو گویا ہم کیا کہیں گے, ہم کراچی یعنی بلد ہو گیا کراچی جہاں میں رہتا ہوں. اور اگر آپ اسے ذرا کلوزلی دیکھیں گے, زوم ان کر کے دیکھیں گے, تو آپ کا جسم آپ کا بلد ہوا, کیونکہ میں ایک غیر مرئی چیز ہوں. انسان مادی چیز نہیں ہے, آدمی مادی چیز ہے, آدمی کے اندر انسان بستا ہے. ہمیں اس انسان سے آگاہ ہونا ہے تو اس مادی جسم کو بلد ماننا پڑے گا یا نہیں. اب ذرا بلد رہنے کی جگہ رکھیں, ٹھیک ہے جی, بلد شہر نہ کریں, ذرا اسے رہنے کی جگہ, مفہوم ایک ہی ہے, شہر بھی رہنے کی جگہ ہے. لیکن جب آگے دیکھیں نا, وَأَنْتَ حِلٌّ حِلٌّ بِحَازِلْ بَلَد, اور تم اس میں تحلیل کیے ہوئے ہو, حلول کیے ہوئے ہو. تو کیا مطلب ہوا, اب آپ پورے شہر میں پھیلے ہوئے؟ نہیں, لفظ ہلم کیا مطلب ہوا, ہلم یعنی کہ آپ اس شہر میں تحلیل. اب شہر کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, لیکن جہاں جس جسم میں آپ رہ رہے ہیں اس میں پورے جسم میں کون حلول کیے ہوئے ہے؟ میں یہ لفظ روح کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, میں میری ذات انتا. دیکھیں قرآن انتا کہہ رہا ہے, میں زبردستی روح کہہ رہا ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بحاضل بلد, اس شہر میں نہیں اس جسم میں, اپنے حواس کو تقسیم مت کرو, ٹھیک ہے, اور تم اس شہر میں یعنی اس جسم میں پوری طرح حلول کیے ہوئے. اب آپ کے پیر میں کانٹا چبھے, آپ کے پیر کو انگلی پہ انگوٹھے پہ کچھ ٹچ کرے, آپ کو فوراً پتا چلتا ہے کہ نہیں؟ والدین و ما ولد, اب بتائیے ان کے تو والد فوت ہوئے تھے, ہاں جی, اور تمہارے والد اور تمہاری اولاد. یہ کیسا شہر ہے جہاں پہ باپ, اور اگر آپ اسے حضور سے منسوب کریں تو کلیش آ گیا کہ نہیں بات میں, ہاں جی. او جی آپ کے آبا اجداد رہتے تھے اور تمہاری اولادیں رہیں گی. ارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے جینز میں آپ کے والد کے ساری خصوصیات ہیں یا نہیں؟ آپ اس جسم میں جو حل کیے ہوئے ہیں, تحلیل ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ کے والد کے سارے ٹریٹس, آپ کے اسلاف کا سارا خصوصیات آپ میں منتقل ہوئی ہیں یا نہیں؟ और आगे जिसने आपसे पैदा होना है क्या उसकी सारी खसूसियात आप में है या नहीं? गौर करें, अगली आयत में देखें बात कैसे जुड़ी ठक करके, लकद खलकनल इंसान फी कबद, तखलीक का जिक्र आ गया ना, यानी मत तकसीम करो इस जिस्म में खुद को, अपने हवास को बखेरो मत, यकसू रहो, क्योंकि आप इसमें बसते हैं, तहलील किए हुए हैं, और इसमें आपके आबा अजदाद के और आपकी आने वाली नस्लों का पूरा खजाना मौजूद है, जखीरा मौजूद है, और हमने इंसान को तो बनाया ही ऐसा है, फी कबद, कि वो काम करे, वो कुछ परफॉर्म करे। हम यहाँ दुआएं मांगने से ही फुर्सत नहीं है कि तू करी जा, तू करी जा। गौर करें जरा, आ यह सबो, क्या वो ये समझता है अब यहाँ पे हिसाब लेगा? नहीं, आ यह सबो यहाँ पे क्या वो ये समझता है, अन लई यक देरा अलैह अहद, अन लई यक देरा अलैह अहद, कि कोई उस पर कुदरत नहीं रखता। यहाँ पे अहद कोई के मानों में, कि कोई उसके ऊपर कुदरत नहीं रखता, कोई उसकी मिकदारें मुकर्रर नहीं कर रहा। ये कूलू और कहता ये है, यानी ये समझता है कि मेरा तो कोई कंट्रोलर ही नहीं है, मैं खुद ही खुद हूं। तो आगे अगला दूसरा जुमला क्या कहता है, अहलक तो मैंने बड़ा माल जाया किया, मालन लुबादा, ढेरों माल जाया कर दिया मैंने, यानी खर्च कर दिया, जाया कर दिया, लोगों पे खर्च किया, तो उसको कह रहा है जाया कर दिया, फना कर दिया। हला माल किसका है? आह यह सब वो अनलम यरा हुआ हद, वो क्या समझता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है? यानी कैसी अजीब सोच है कि वो समझता है कोई उसे देख नहीं रहा। अलम ना जल लहू आयनैन, कि क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी, यानी सारों को ही दो दो आंखें दी हैं, तो वो क्या समझता है कि जिसको हम दो आंखें दे रहे हैं, जिनको औरों को दी हैं, क्या वो इसे नहीं देखते, क्या देने वाला नहीं देख रहा इसमें ये बारीकी? अलम ना जल लहू आयनैन, क्या हमने इसको दो आंखें नहीं दी, व लिसानम व शफतैन, और एक जबान और दो होंठ नहीं दिए? तो जो मैं बोलने की जो पार्ट्स हैं, जो ऑपरेटर्स है बोलने का, नुत्क जिसे कहते हैं, जो जिसमें जबान और होंठ शामिल हैं, क्या देने वाला नहीं बोल सकता? गौर करें बात किधर जाके लिंकअप हुई है। वह हदैनहुल नजदैन, और उसको हदायत दे देते हैं, यानी दिखा देते हैं, नजदैन दो रास्ते, नजदैन आपको देखे ना, हर कदम पे दो रास्ते हैं, दोनों का असर पता है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, ये करूंगा ये रिजल्ट आएगा। आपने कहा कि भाई मैं ये कुरान पढ़ता हूं, दूसरा फैसला नहीं, दूसरा रास्ता नहीं पढ़ता, पढ़ने के फायदे ना पढ़ने के फायदे दोनों पता है आपको, फैसला आपने करना है। फलक तहम्मा, फलक तहम्मा हम्मल अकबा, तो फिर क्यों ध्यान नहीं करते, अकबा जो पीछे रहेगा, जो अंजाम है, फलक तहम्मल अकबा, यानी वो अब यहां घाटी में घुसेड़ रहे, फलक तहम्मल अकबा, फला पस, ला क्यों नहीं, ला नहीं, फलक तहम्मल अकबा, ध्यान क्यों नहीं करता, किसका? अकबा का, अकबा। देखे ना, एक बात करने लगा हूं और मुझे ये एहसास ही नहीं है कि उसके क्या असरात होंगे, तो बात का असर बाद में आएगा ना, तो वो क्या कहलाया? अकब। अकब वैसे पीछे को कहते हैं, हमारी पुश्त की तरफ जो कुछ हो रहा है वो अकब है, लेकिन किसी भी चीज की बैक यानी जो बात हो रही है उसका अंजाम। तो अकबा व मादरा का मल अकबा, ये अकबा है क्या? फक्को रकबा, गर्दन का छुड़ाना, फक्को छुड़ाना, रकबा, रकब कहते हैं गर्दन को, नहीं रकब कहते हैं निगरानी को। कुरान में एक लफ्ज रकीब भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह रब्बे करीम के नामों में से एक नाम है रकीब, इसका मतलब है मुराकबा, असल में इसी से निकला है, इसी लफ्ज से फक्को रकबा। लोग कहते हैं कहाँ है कुरान में मुराकबे का तज़करा, ये आयत जो है ये फक्को रकबा असल में मुराकबे का पूरा मैकेनिज्म है। क्या हमने तर्जुमा कर दिया कि जी गर्दन छुड़ाना? अरे भाई गर्दन पे जो आपका जुआ पड़ा हुआ है, ये जो वो हल पंजाली कहते हैं उसे, हल चलाने के लिए वो जो बैल की गर्दन में बांधा जाता है एक लकड़ी का खांचा सा, उससे गर्दन को आज़ाद करना है, यानी जो आपके जहन में मुआशरती पाबंदियां हैं ये कैसे आज़ाद होती हैं? जब आप आंखें बंद कर लेते हैं, जब आप बाहर नहीं देखते, जब आप अपने अंदर देखते हैं, जब आप इनर सेल्फ में देखेंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। आज़ादी से क्या मुराद है कि आप जो जहन, बल्कि रूह की जो फ्लाइट बनती है, जहन की जो फ्लाइट बनती है उसको ऑब्जर्व करते रहें, फिर जहन को ढीला छोड़ दें। फक्को रकबा, जहन को आज़ाद कर दो, आपने कर दिया गर्दन छुड़ाओ। और मैंने कई तफासीर में पढ़ा है कि जी गुलाम खरीद के आज़ाद करो, अब मुझे और आपको गुलाम नहीं मिलता कोई, बताएं किसको आज़ाद कराएं हम? और भाई असल गुलाम मेरा ये अपना है, सेल्फ है, जो कि इस मादी जोन में गिरफ्तार है। इससे बाज आने का एक ही तरीका है कि आप आंखें बंद करें, बाहर देखना बंद करें। अब देखें ना, हम मुराकबा करते हैं, कहने को हमने आंखें बंद की, लेकिन ईमानदारी से बताएं कान जो हैं वो चौकन्ने नहीं हो जाते हमारे? यानी बाहर क्या हो रहा है, वहाँ आहट आ रही है, वो हवा चल रही है तो परिंदे चहचहा रहे हैं, तो वो कुत्ते भौंक रहे हैं, हमारा ध्यान तो इधर फंसा रहता है। आप जब सो जाते हैं आपके कान तो खुले रहते हैं, उसमें तो आप कोई प्लग नहीं करते, लेकिन क्या होता है आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। यानी आप जब सचमुच अंदर उतर जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, तो बाहर के माहौल से आप डिटैच हो गए। ये डिटैचमेंट तो होती नहीं है, इस डिटैचमेंट को फक्को रकबा का है। वह माँ, यानी जब आप गौर फिक्र करना सीखेंगे तभी आप अंजाम को चेक कर सकेंगे ना। ये अल्लाह रब्बे करीम क्या बता रहे हैं, वह माँ अदरा का मल अकबा, अकब, अकब में क्या है? ये वो नहीं है अकब वो जो बच्चा कहता है पीछे देखो, वो पीछे देखो पीछे देखो पीछे, ये अकबा। तो उसके लिए अल्लाह ने बताया कि एक तो आपने ये करना है कि अपने जहन को ढीला छोड़ें, ठीक है, अपने इनर सेल्फ को। और दूसरा बात क्या है, वह वह इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, यानी ज़रूरतमंद को खाना खिलाओ, मसगबा भूखे को, ज़ी मसगबा यानी जो ज़रूरत वाला है, जिसको भूख लगी हुई है, उसको जब वो उस हालत में हो, यौम हालत, ज़ी मसगबा जब वो भूख की हालत में हो तो उसको खाना खिलाओ। आप अपने अंदर इनर सेल्फ को लिबरेट करें, भूखे को खाना खिलाएं, यतीमन जा मकरबा, और यतीम को, और जो कुर्बत वाले हैं, वो मस्कीनन जा मतरबा, और वो मस्कीन जो मट्टी में पड़े हैं, मतरब तराब से, तराब मट्टी यानी जो गिरे हुए। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनु, पस जो आप में से आमनु बात मानते हैं, वतवासौ बिसब्र, और उस पे इस्तकामत से कायम हो जाते हैं, वतवासौ बिल मरहमा, अब ये लफ्ज मरहमा को थोड़ा सा सुन लीजिए, ये लफ्ज रहम करने से है, ठीक है, रहम से है। बिल मरहमा यानी किसी सिस्टम को कंटिन्यूएशन में रहने देना रहमत है, किसी भी निजाम को जारी रखना, जारी रहने देना। देखे ना, तसलसले हयात, तसलसले हयात का शोभा अल्लाह की सिफत रहीमी है, यानी सिफत तखलीक है। वह तवासौ बिल 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 यानी साथ, किस चीज के, मरहमा। अब आपने मेहरबानी कर दिया तो मर्जी आपकी भाई। औलाए का असहाबुल मैमना, और ये वो लोग हैं जो दाहने वाले हैं, यानी पॉजिटिव थिंक करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, ये मुस्बत तर्जों वाले हैं। वल्लजीना काफरू बे आयाते ना, और जो हमारी आयात की निशानियों की तकफीर करते हैं, उनको रद्द करते हैं, उसके मुकाबले में अपनी चलाते हैं, वो हैं असहाबुल मशामा। असहाबुल मशामा क्या हैं? बाएं वाले, यानी नेगेटिव अप्रोच वाले। अलैहिम, उन पर है नारुन आग, मोसदा। मोसदा का मतलब है जो वॉलेट को कहते हैं, असल में तिजोरी को, यानी के आग की तिजोरी में उन्हें रखा जाएगा। अब जरा गौर करें, तिजोरी और वो भी आग की, और आपको कीमती चीज समझ के उसके अंदर बंद कर दिया जाए, जरा अपनी कैफियत का अंदाजा करें, घुटन की इंतहा का अंदाजा करें। एक लफ्ज से वो सारी कैफियतें, अलैहिम नारुन मुसदा, उन पर है आग और जिसमें वो बंद होंगे। दिल बी इन दी वॉलेट ऑफ फायर, यानी पछतावा और घुटन, पछतावा और घुटन, ठीक है जी। सदक अल्लाहुल अजीम, बेशक अल्लाह रब्बे करीम ने। अब अगर हम गौर करें तो देखें ना इसमें कितना सबक है, कितनी गहराई है एक एक बात में, लेकिन हम सिर्फ वो सवाब कमाने की तिलावत से ही फर्क नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम सवाब कमाने के साथ साथ इसके मफहूम भी समझें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप मफहूम समझेंगे तो आपके सवाब में हजारों हजारों गुना इजाफा हो जाएगा। बेशक एनी क्वेश्चन? जी जी नहीं, असल में यूं है कि दाएं नथने से जो हम सांस लेते हैं ना, इसमें गरम रंग दाखिल होते हैं जिस्म में, यानी पीला, नारंगी और सुरख। वो आगे रफ्तारों का चक्कर है, अगर आप स्लो सांस ले रहे हैं तो येलो, जरा तेज ले रहे हैं तो नारंगी, बहुत तेज खींच रहे हैं तो वो सुरख रंग जज़ब होगा दाएं नथने से। दायां जो है ये सूरमा कहलाता है, सूर्या चंद्रा, सूर्या यानी के सूरज से रिलेटेड किया हुआ है योगा में, और बायां नथना चंद्रमा यानी के चांद से को रिलेट किया गया है। तो मैंने इस पे जब ये बात गौर कर रहा था तो मुर्शिद करीम जब मुझे ये रंगो रोशनी पढ़ा रहे थे, ये रंगो से इलाज की बात हो रही है, रंगो रोशनी से इलाज, तो हुआ ये कि मेरे जहन में ये बात आई कि बायां नथना जो है ये ठंडे रंग जज्ब करता है, यानी आसमानी, नीला और जामनी। तो और जब ये दोनों नथने बराबर सांस लेते हैं तो ग्रीन कलर जमा होता है या जज़ब हो रहा होता है हमारे अंदर। तो ये है रंगों का चक्कर, यानी कि इसका सांस का बहुत गहरा ताल्लुक है पूरे निजाम से। देखे ना, हमारी जिंदगी जो है वो सांस से रिलेटेड है, सांस ही हमारी पहचान है हयात की। अगर सांस ना चल रहा हो तो आप क्या कहते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिंदगी को ये सांस इंडिकेट करता है। यानी कि अगर आप देखें ना किसी बंदे की जिंदगी का हुक्म कैसे लगाते हैं कि भाई इसका सांस चल रहा है, ठीक। अब इसी तरह आपके कैफियत जो हैं वो भी असर अंदाज होती हैं सांस पे, और सांस असर अंदाज होता है कैफियत पे। मसलन आप घबराए हुए, बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं, आप जरा सांस को कंट्रोल करना बैठ जाएं, आप गहरा सांस लें, रोकें और आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें, तो वो जो एजिटेशन की कैफियत है वो कंट्रोल हो जाएगी। आप किसी की बात सुन के एकदम गुस्से में आते हैं तो आप अपने सांस की रफ्तार देखें क्या हो जाती है। आप जब डिजेक्शन में चले जाते हैं तो आपके सांस की रफ्तार स्लो हो जाती है, तो उस वक्त तेज सांस लें। तो जब आप सांस से गवर्न करना सीख लेते हैं अपनी कैफियतों को, तो फिर कैफियत सांस की रफ्तार पे असर अंदाज नहीं होती। यही बात आपको उसमें कही थी, या तो हन नफ्सिल मुतमाइना, ए इत्मीनान से सांस लेने वाले, ए मुतमईन इंसान, ए मुतमईन नफ्स। तो मुतमईन नफ्स क्या, उसकी पहचान क्या होगी, कैसे क्या कंडीशनैलिटीज होंगी? जाहिर है कि उसकी कंडीशन ये होगी कि वो सांस सुकून से ले रहा होगा। हाँ ठीक हो गया जी 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 ये जो दायां और बायां नथने का खुलना और बंद होना है, ये हर 90 मिनट के बाद चेंज करते हैं सेहतमंद आदमी में, ठीक हो गया। जब ये नथना, ये कुदरत का निजाम है, कुदरत खुद ब खुद अल्टरनेट करती रहती है हर 1.5 घंटे बाद एवरेज, और कीजिए चेक कीजिए जी जी हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, आपने नोटिस किया, आई एम सो क्या कहते हैं एव्ड, दैट्स वंडरफुल जी कि किसी ने नोटिस तो लिया इस बात का। खास तौर पे जब ये नथना चल रहा हो ना दायां, तो कोशिश करें कि आप बाएं नथने को बंद करके दाएं से ही सांस लें। जब दाया बंद हो तो इसका मतलब है कुदरती तौर पर आपको ठंडे रंग की जरूरत है, तो दाया ही बंद करके बाएं से सांस लें। जब देखें ना आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ना चलें, ठीक हो गया। जी हाँ ये कहते हैं, बाकी जाहिर है जब चांद मुकम्मल होता है तो वो उसका रंग जो है वो पानी को खींचता है, क्योंकि चांद में पानी का रंग है, पारे का रंग है, तो ये रंग को रंग खींचता है ना। तो जब चांद पूरा होता है, फुल मून होता है, तो आपने सुना होगा एक बीमारी है जिसका नाम है ल्यूनेटिक होना, ल्यूनेटिक लूनर से है, लूनर मैंने चांद के असरात पड़ते हैं, तो जिस जहन हल्का होके ऊपर उठता है वो लोगों को पागलपन दिखता है बंदा रुमानी हो जाता है, रुमानवी सी बातें करता है, शायरी अच्छी लगती है चंद तेरी चांदनी में जिया जला जाए चलें अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।